दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है ना कि बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा मानना यह दुआ ही है। और जो अच्छा कार्य करता है उसके संग में रहना सदा सभी को अच्छा लगता है, उसके सहयोगी बहुत बन जाते हैं, तो दुआएं भी मिलती है, सहयोग भी मिलता है। तो जहां दुआएं है सहयोग है, वहां सफलता है ही है। तो कितनी प्राप्ति है, बहुत प्राप्ति है ना। इसलिए सदा कर्म योगी, जब योग होगा तो कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना और स्वयं भी श्रेष्ठ आत्मा हूं इस स्मृति में रहना। योग का अर्थ ही है श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं स्मृति में रहना। तो जब स्मृति श्रेष्ठ होगी तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी ना। और स्थिति श्रेष्ठ होने के कारण न चाहते भी वायुमंडल श्रेष्ठ बन जाता है। तो कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। कर्मयोगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल। कोई ज्ञान सुने नहीं सुने, योग सीखे नहीं सीखे, लेकिन वायुमंडल का प्रभाव स्वतः ही उनको आकर्षित करता है। मधुबन में क्या विशेष अनुभव करते हो, तपस्या का वायुमंडल है ना। तो जो भी आते हैं उनका योग बिना मेहनत के ही लग जाता है, योग लगाना नहीं पड़ता, योग लग ही जाता है। ऐसे होता है ना, मधुबन में योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वायुमंडल तपस्या का है, संग तपस्वी आत्माओं का है। ऐसे जहां भी आप कर्म योगी बन कर्म करते हो, वहां का वातावरण वायुमंडल ऐसे औरों को सहयोग देगा। अनुभव हो ना, सहयोग मिलता है। और प्रश्न पूछ रहे हैं, सहयोग मिलता है तो आपका सहयोग भी औरों को मिलेगा। जहां रहते हो वहां सेवा होती है, सदा कर्मयोगी आत्मा बाप को भी प्रिय है तो विश्व को भी प्रिय है, विश्व के भी प्रिय बने हो या बन रहे हो। देखो, कल पहले भी विश्व के प्रिय बने हो तब तो आपके जड़ चित्रों को भी सभी कितना प्यार करते हैं। तो वो आपके चित्र है ना, अपने से इतना प्यार नहीं होगा जितना चित्रों से होगा। तो चैतन्य में बने हो तभी जड़ चित्रों की निशानी देख रहे हो, चैतन्य रूप में अपने जड़ चित्र यादगार देख रहे हो, तो देख करके खुशी होती है ना। हम ऐसे विश्व के प्रिय बने हैं क्योंकि बाप के प्रिय बने हो ना, तो कितनी खुशी है। खुशी में नाचते रहते हो, सभी को खुशी में नाचना आता है कमलेश में? बाबा कहते हैं सभी को खुशी में नाचना आता है, ऐसा कोई है जिसको खुशी में नाचना नहीं आता? सभी को आता है। पाव से नाचना तो किसी को भी आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन खुशी में नाचना तो सभी को आएगा। और इस नाचने में थकते भी नहीं, तो सदा नाचते रहते हो। ब्राह्मण जीवन में सिवाय खुशी के और है ही क्या? दुखदाम को छोड़ दिया ना, तो दुख क्यों आए? और जहां दुख नहीं होगा तो खुशी होगी ना। संगमवासी सदा खुश रहते हैं, कलयुगवासी दुखी रहते हैं। तो संगम युगी हो या कभी कभी दुखधाम वासी बन जाते हो, तो संगमी भी हो या कभी कभी दुखधाम वासी बन जाते हो, या कभी कभी गलती से चले जाते हो, स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती, साकार की तो बात ही नहीं है। तो सभी याद रखना कि हम कर्म योगी है, कर्म और योग को सदा साथ रखने वाले हैं। अच्छा, इसे सदा खुश रहने वाले कर्मयोगी बाप के प्रिय आत्माएं हैं। यही खुशी सदा अविनाशी रहे, कभी कभी वाले नहीं, सदा वाले, कभी खुशी कभी दुख की लहर वाले, ये अच्छा नहीं लगता। तो खुश है और सदा खुश रहेंगे। अच्छा, अरे बाबा ने विशेष सार में बताया है कि सर्व की ब्लेसिंग लेने के लिए कर्म और बैलेंस। बाबा ने कहा गया कि कर्म में योग, ऐसे नहीं कि जब योग में बैठे तो योगी है और जब कर्म करते हो तो योग को भूल, कर्म क्या होता है, महान बन जाता है। तो वह कहते हैं कि ऐसे नहीं हो कि जब योग में बैठते हो तो लगता है कि बैठे ही रहे तो अच्छा है। तो जो आत्मा, बाबा ने विशेष कहा कि कर्म और योग का बैलेंस रखती है ना, तो बाबा ने बताया कि उनको क्या होता है, बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग मिलती है, साथ में जो भी संपर्क संपर्क में आने वाले है उनसे भी ब्लेसिंग मिलती है, दुआएं मिलती है। और उसके साथ क्या होता है, उसके बहुत सहयोगी बन जाते हैं। तो बाबा ने विशेष कहा कि याद माना क्या, बाप की श्रेष्ठ स्मृति में आत्मा श्रेष्ठ हूं, तो स्मृति से स्थिति से वायुमंडल बन जाता है। तो बाबा ने लास्ट में कहा कि खुशी में नाचना आता है। तो विशेष सारे मुरली का है, तो विशेष है कि जब भी हम कर्म करते हैं तो कर्म और योग का बैलेंस। अच्छा, ओम शांति।
आपका कुछ कर्म योग का अनुभव है?
अच्छा, ओम शांति। वैसे तो मैंने पढ़ाई बहुत की है, वैसे तो बताता नहीं किसी को क्योंकि क्या होता है, जब बैठे है ना बताऊंगा तो सबके हमारे पता जो भाव है ना बदल जाएगा। इसे कभी मैं रहता ना, तुम्हें बाबा तो कहता ना हमेशा कि फॉलो वन, एक बाप दूसरा ना कोई है ना, तो मेरे जीवन में दो को फॉर्मूला याद करता हूँ, दो को फॉर्मूला। विशेष बाबा के साथ दो घनिष्ठ संबंध, दो पावरफुल बाबा के महावाक्य, वो जब भी याद आए तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाए। तो पावरफुल समान, तो इस अभ्यास मैंने कहा कि बाबा से दो घनिष्ठ संबंध, मैंने बाबा से पहला घनिष्ठ संबंध रखा है बाबा मेरा माशुक है, सबको माशुक है ना सचिन भाई, किस नाम से पुकारता है, माशुक है ना, तो किस नाम से पुकारना चाहिए ना, इतना घनिष्ठ संबंध है ना। तो बाबा मुझे मित्री कहता है और मेरा मित्र है, इतना वो प्यार से मुझे बुलाता है, तो इतना घनिष्ठ संबंध चाहिए है ना। दूसरी वजह से दो पावरफुल महावाक्य, तो बाबा की जब भी मैं दो पावरफुल महावाक्य याद करता हूं ना, तो पहला महावाक्य है कि बच्चे तुम सूर्य तुल्य हो, तेमान शान निंदस्तुति ये तो तिम तिमाते दीपक है, और लास्ट का है तिम तिमाते दीपक से स्वयं को प्रकाशित करने का तुच्छ संकल्प न करो, एक महावाक्य। और दूसरा है सत्य के सूर्य को असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते, असत्य का काले बादल बिखर जाएगा टूट जाएगा, सत्य का सूर्य ऊपर आएगा, क्योंकि सत्य में स्वतः शक्ति है सिद्ध होने। दो समान है, एक में शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न आत्मा हो और दूसरा है बाप समान संपूर्ण पवित्र आत्मा। वैसे तो हमारी लाइफ का जो अनुभव है तो अलग ही है, वैसे मैं भी जो बाहर वाले लोग है वैसे मैं ब्रह्मा कुमारी को गाली देता था पहले ही बहुत अपोजिट था ज्ञान में, पहले हमारे भैया जब चलते दो साल तो प्योरिटी कारण में भैया को खुद गाली देता था
बड़ी
भाई बस। एजुकेशन तो मैंने बहुत किया है, तो मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद में एमबीए किया हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जो जितने पढ़े लिखे होते हैं उनको इस ज्ञान में बहुत तकलीफ होती है ना, तो काम रहता है। मैं तो कहता हूँ है ना, मैं तो बाबा से बहुत थैंक्स करता हूँ कि कितना पढ़ा लिखा हूँ फिर भी बाबा ने मुझे अपना बनाया है ना। अनुभव बताता हूँ कि जैसे आप पहाड़ी है ना, तो हम वहां में हमारे पहाड़ी है, वैसे हमारे बिजनेस है हमारा। डॉक्टर कुमार बहन जो हमारे यहाँ शिवरेली में आई थी, दोबारा आई थी, हमारा बिजनेस शिवरेली में, मैं और भैया वास्ता हमारा बिजनेस चलता है। जैसे आप पहाड़ी है वैसे हमारे पहाड़ी हुआ, हम मंडी को शाम को योग के लिए जाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, थोड़ा अंधेरा हो गया, चलते थे नीचे आ गए है ना, मैं और मेरा भाई एक साथी था, वो साथ साथ चल रहे थे, वो आगे थे मैं पीछे था। तो मैंने क्या किया, चलते उनको क्रॉस किया, मैं आगे चला गया, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो बीच में एक झुंड होता है ऐसा, झुंड कहते हैं क्या कहते हैं उसको, उसमें झाड़ी झाड़ी झुंड पेड़ पौधे थे, उससे गुजर गया। तो अचानक क्या हुआ, मुझे बहुत चोट आ गई, मुझे चिल्लाया, पहले मेरे को लगता था कि माँ या पप्पा बोलता ना आईगा क्यों, तो उस समय याद क्या आया, बाबा बाबा तुम्हें पर इसने क्या था, बहुत दर्द हो गया, कुछ पता नहीं चला क्या क्या हुआ है ना। तो उस समय तो लगभग 7 बज गए थे, तो उसके बाद मैं मुरली चला जाता 7:30 बजे, तो उसमें जाके गया, तो उसके बाद बहुत चोट आ गई, बहुत दर्द हो रहा था, इसको लेफ्ट आईलैंड लेफ्ट पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या 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 कुछ पता चले, कुछ क्या काटा है क्या है कुछ नहीं पता चला। तो उसके बाद मैं एक आधा ग्लास पानी पिया, डॉक्टर बस गया, मैं पता कैसे ऐसा हुआ है, चोट लगी है, तो उन्होंने पेन किलर दिया, तो उसके बाद टाइम ने पेन किलर दिया और थोड़ी देर के लिए वो पेन फैल गए। तो उसके बाद मैं जाके योग में बैठा 7:15 से 7:30 बजे तक, उसके बाद 7:30 से 8:30 बजे तक मुरली ली है ना, 8:30 बजे तक कुछ नहीं हुआ, तो 8:30 बजे गए बाबा गीत लगा और उसके बाद मुझे चक्कर आने घूमने लगा घूमने लगा, और बाद में बाद में ना है ना सबने मुझे लेके हॉस्पिटल ले गए, पता चला कि काटा था मुझे सांप ने काटा था। तो मैंने ऐसा अनुभव किया है कि एक क्या ना घंटा जब मैं बाबा को मुरली चल रहा था है ना, प्रयोग में बैठा तब तो कुछ नहीं हुआ, बाद में धीरे धीरे उत्तर और बाद में मैं 4 दिन हॉस्पिटल में था, मेरे पैर में बहुत सूज थी, 4 दिन कुछ नहीं था, चलने के लिए कुछ नहीं आता था, बहुत पैर ऐसा ही हाथ था। तो घर वाले ने तो ऐसे घर वाले में हमारे भैया मम्मी पप्पा है, तो ऐसे तो मम्मी पप्पा बहुत अपोजिशन में अभी तक कहते कि तो शादी कर है ना, तो उनको पता नहीं मेरा तो साजन शिव बाबा है ना, बाबा ने तो मेरी शादी भी किया, उसके साथ हनीमून में हम दिल्ली में गए थे है ना। वैसे तो आप सब मधुबन निवासी बहुत सीनियर है हमसे, हम तो बहुत जूनियर है, अभी हमें 3 साल हो गए, तो छोटे है, बहुत महान है ना, हम पिया जब आते हैं ना बहुत हमको लगती है कि कितना वायुमंडल है, कितने हम भाग्यशाली है, फिर भी हम हर साल एक माना यहाँ आते हैं, सेवा करते हैं, और यहाँ हम किसी बताते नहीं कि हम ये है, कितना जब आते जितने वैसे नाम लिखते हैं, तो जो सेवा देंगे उसमें राजू कुछ मान मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं कि ये चाहे वो सेवा चाहिए, ऐसी सेवा नहीं चाहिए, जहाँ मिलेगा जो बाबा साहब बाहर रखेगा, अभी मैं विशाल भवन में है, उधर ही खाली पटपिछ होते तो बड़ी बात नहीं, क्या अगर जहाँ बाबा रखेगा नहीं ना। तो वैसे मुझे दो कफा मैंने पता ना, तो मैं वैसे बाबा तो कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाबा है ना, लेकिन मैं दो को फॉलो करता हूँ, एक जानकी दादी वो मेरे रोल मॉडल है, जानकी दादी और जगदीश भाई, तो जानकी दादी के बारे में मैं एक खुन लेता हूँ, उनका उमंग उत्साह, और जगदीश भाई को इतना ज्ञान नहीं बाबा है ना, लेकिन कितने सिंपल रहते, सबको पता है ना देश के बारे में, सबको पता है कितने सिंपल रहते। वैसे मुझे भी लगता है कि ये दिखाने ज्ञान जितनी दिखाने चीज नहीं लग सकता, है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ ये भी माया है, मैं कभी वैसे में बोलता नहीं खुद के बारे में, ये भी लेकिन माया है। बोलेंगे तो सबका हमारा देखने का, कल से सबका हमारा तरफ देखने का ढंग अलग हो जाएगा। कोई से किसी को बताता ना। अच्छा ठीक है,
तो बाबा ने आज कर्म योग के बारे में कहा। कर्म योग अर्थात कर्म योग का बैलेंस, कर्म योग अर्थात कर्म करते हुए योग। और दूसरी एक बात कही, योग में कर्म वो क्या है? बाबा ने कहा कर्म योग अर्थात कर्म करते करते योग, और दूसरी परिभाषा दी योग में कर्म वो क्या है? कर्म में कौन सा योग, योग में कौन सा कर्म? तो योग अर्थात सकाश, और योग में कर्म नहीं किया तो कौन सा कर्म करना है? योग
में
स्मृति को श्रेष्ठ रखना,
अच्छे अच्छे मनन चिंतन।
तो योग और मनन चिंतन एक ही है? क्या कहेंगे? बाबा ने कहा है आज कर्म योग अर्थात कर्म में योग तो समझ में आ रहा है, पर योग भी कर्म क्या है चिंतन का विषय है कि योग में कौन कौन से कर्म किया जाए। बाबा ने कहा कर्म योगी यदि है तो श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति यदि है तो श्रेष्ठ स्मृति यदि है तो श्रेष्ठ स्थिति, और श्रेष्ठ स्थिति यदि है तो श्रेष्ठ वायुमंडल। ये कर्मयोग की परिभाषा है। और अगर ऐसे कर्मयोगी हम हैं तो सर्व की दुआएं मिलेगी, सबका सहयोग मिलेगा और विश्व के प्यारे बनेंगे। इतने प्यारे कि द्वापर से भक्तों को चित्र अपने से ज्यादा चित्र प्यारे होंगे। तो संसार में कर्मयोग की क्या परिभाषा है और हमारी कर्मयोग की क्या परिभाषा है? संसार में कहा जाता है कर्म के फल की चिंता किए बिना जो कर्म किया जाता है वो कर्मयोग, या फिर संपूर्ण तल्लीनता से जो कर्म किया जाता है संपूर्ण उमंग उत्साह से वो कर्मयोग, या कुशलता से। पर हमारा कर्मयोग वहां नहीं रुकता है, सारी गीता जो लिखी है वो कर्मयोग पर लिखी हुई है, पर हमारा कर्मयोग कुछ और है। हमारा कर्मयोग अर्थात कर्म तो कर रहे हैं परंतु योग है, मतलब कर्म तो कर रहे हैं परंतु मन बुद्धि का टाइम टेबल बना हुआ है, कर्म तो कर रहे हैं परंतु हर कर्म में कोई ना कोई समान है, कोई ना कोई श्रेष्ठ स्मृति है, हर कर्म के साथ श्रेष्ठ स्मृति जुड़ी हुई है। चाहे साधारण कर्म है परंतु स्थिति महान है। तो बाबा ने बहुत बार कहा हुआ है कि अमृत वेले के बाद मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। जिस प्रकार की हमारी दिनचर्या है उस दिनचर्या में कौन कौन से कर्म है पहली बात तो ये, और उस अनुसार उस कर्म के साथ किस किस योग का प्रयोग किया जाए। हमें केवल योगी नहीं प्रयोगी बनना है। तो कर्म के साथ में समान को जोड़ या तो योग के प्रयोग को जोड़ना, ये एक काम किया है बाबा ने आज। तो सबको कर्म योगी बनना है, केवल बैठा बैठा योगी नहीं। योग स्थिति है, कोई क्रिया नहीं है कि जो की जाए। बैठ गए बाबा के कमरे में योग किया और निकले खता क्लास, ये नहीं। निरंतर स्मृति निरंतर याद और एक की याद। आज की मुरली में तो कहा कि बाप के अतिरिक्त और किसी को याद किया तो गोया क्या है? बाप, तो वो भी बाप है, वो भी व्यभिचार है। मेरे से सुनो, मेरी मत पर चलो, और कुछ नहीं सुनो। तो हमें अपने योग की जो सफलता है वो कर्म में दर्शन वो दिखनी चाहिए। जो योगी अर्थ में उसके कर्म स्वतः ही महान होने लगते हैं, क्योंकि स्मृति श्रेष्ठ है। तो योग अर्थात स्मृति ही है एक रीति से। तो श्रेष्ठ स्मृति से श्रेष्ठ स्थिति से श्रेष्ठ वायुमंडल, ये याद रखना है। और दूसरा बाबा ने कहा ना सदा खुश रहने वाले हैं। सदा खुश अर्थात खुशी में नाचना है, स्थूल नाचने की बात नहीं है, सूक्ष्म नाचना है। सूक्ष्म स्थिति योग की अगर है श्रेष्ठ, तो स्वतः ही हम खुश रहेंगे। दुख धाम को छोड़ दिया तो निरंतर यह चिंतन करते रहना है मन में। और जो मैंने कहा ना, एक होमवर्क जो बाबा ने दिया है वो है कि योग में कर्म अर्थात क्या, इसके बारे में सोचो जरा। पंचगुण योग में कर्म, कौन से कर्म की बात चल रही है जिसको कर्म योगी कहा जाए? एक तो समझ में आता है, परंतु योग में किस प्रकार के कर्म? चिंतन तो अलग चीज है, ठीक है।
जो वैसे कर्म है जिसमें बुद्धि का उपयोग ज्यादा करना रहता है ऑलरेडी, उसमें फिर योग का प्रयोग कैसे करते?
उसमें योग का प्रयोग, अगर बुद्धि का जिसमें बहुत ज्यादा काम है, तो वो कर्म करने से पहले याद, कर्म के बीच में तो नहीं कर सकते, कर्म होने के बाद उसको समर्पण, ताकि उस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, हो तो भी बहुत कम से कम। जो भी कर्म करे, अगर बुद्धि वाला काम है, हरे बहुत कम समय होता है कि हरे को जहाँ बुद्धि वाला काम रहता है, बहुत सारे सेवाएं तो ऐसी है कि जहाँ बुद्धि का बहुत ज्यादा काम नहीं, और लंबे समय से वही सेवाएं कर रहे है, तो वो स्वतः ही होती रहती। वो संडे की मुरली में कहा ना बाबा ने, सेवा और स्थिति का बैलेंस। सेवा तो स्वतः ही होती रहेगी, सेवा के लिए मेहनत नहीं है, स्थिति के लिए मेहनत है। सेवा का बल और स्थिति का बल, तो सेवा का बल तो ज्यादा है पर स्थिति का बल कम है। तो बाबा ने कहा ये अगर बैलेंस है तो ब्लेसिंग मिले, नहीं तो नहीं, तो मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। और ऐसे जो बुद्धि वाले कर्म है जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, वहां तो कर्म करने से पहले और कर्म करने के बाद बीच का जो पीरियड है वो तो पूर्ण एकाग्रता का है, क्योंकि हम वहां पर उस तरह से जिस तरह से योग करते हैं, याद करते, वो नहीं कर सकते। वहां तो बुद्धि को यूज करना होता है ना।